Introduction of Swamiji yesterday by our secretary Ramabai and Rekale Puja Swamiji no Parichyato, so Swamiji Vrindavan to Padaya Chhe and Vrindavan Swamiji na Darshan Kariye and na Pravachan no Lab Laiye. Please Puja would like to garland Swamiji Puja. Thank you. Now I will request Swamiji to start the program. Thank you.
कल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमो महाबदन्नाय कृष्णप्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्णचैतन्यनाम्ने गौरत्विषे यं प्रव्रजन्तमनुपेतमपेतकृत्यम् द्वैपायनो विरह कातर्याजुभाव पुत्रेति तन्मयतया तर्वोभिनेदो सर्वभूतहृदयं मुनिमा वृन्दाय तुलसीदत्त्यै प्रियायै केशवस्य च कृष्णभक्ति प्रदेशे सत्यवत्यै मैं सबसे पहले अपने गुरु जी के चरणों में अपनी आंतरिक श्रद्धा पुष्पांजलि अर्पित करता हूं। उनका नाम नित्य लीला प्रविष्ट ओम विष्णुपाद 108 श्री श्रीमद भक्ति प्रज्ञान केशव गोस्वामी महाराज। वे विश्वविख्यात जगत गुरु नित्य लीला प्रविष्ट ओम विष्णुपाद शिष्य भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी ठाकुर जी के अत्यंत प्रिय शिष्य में हैं, जिन्होंने भारत में, भारत के बाहर में, समस्त विदेशों में भारतीय और वैदिक संस्कृति और वैदिक ज्ञान का प्रचार किया। विशेष करके हरिनाम संकीर्तन का उन्होंने विश्व में प्रचार किया। उन्होंने स्वामी भक्ति वेदांत स्वामी जी के माध्यम से समस्त पाश्चात्य देशों में हरिनाम संकीर्तन का और वैदिक ज्ञान का उन्होंने प्रचार किया। हम स्वामी जी के इस कार्य के लिए ऋणी हैं जो विश्व में हरिनाम संकीर्तन का प्रचार किया। बहुत थोड़े दिनों में मैं समझता हूं कि विश्व के लिए जो इस समय बहुत विश्व दुखी है, उन लोगों के लिए वैदिक संस्कृति और वैदिक ज्ञान का होना बहुत जरूरी है। बिना इसके द्वारा विश्व प्रेम नहीं हो सकता, इसके द्वारा सुख और शांति नहीं हो सकती। आज हम देखते हैं कि विश्व में किसी चीज की कमी नहीं है, किसी चीज की कमी नहीं है। आजकल भारतीय विश्व का विज्ञान इतना अधिक बढ़ गया है कि एक हृदय सड़ जाने पर दूसरा नया हृदय लगा सकते हैं। यदि दिमाग सड़ गया तो उसको निकाल करके दूसरा प्रत्यारोपण कर सकते हैं। एक रसोई घर से लेकर के एटम बम और नाइट्रोजन बम इत्यादि बनाने तक बहुत विज्ञान ने उन्नति की। रसोई घर से भी अधिक उन्नति की इस विज्ञान ने। हम बहुत थोड़ी दिन में, थोड़ी देर में यहां से उत्तरी ध्रुव से दक्षिणी ध्रुव में जा सकते हैं। बहुत थोड़े समय में हम विश्व को घूम सकते हैं। यहां पर बैठे ही कहां फुटबॉल हो रहा है, कहां क्रिकेट हो रहा है, कहां कोई कुछ हो रहा है, यहां से बैठे भी हम देख सकते हैं, बातचीत भी कर सकते हैं। इसलिए पृथ्वी समय एक मुट्ठी में आ गई। विज्ञान ने तो इतना चमत्कारी काम किया कि तो साथ ही साथ में एक समस्या पैदा कर दी। वो समस्या क्या है? आत्मा का गुण जो प्रेम है, पति और पत्नी का परस्पर जो प्रेम आज से 100 वर्ष पहले, 50 वर्ष पहले था, आज वो समाप्त हो चुका। भाई बहन का जो रिलेशन था, संबंध था, वो भी धीरे धीरे समाप्त होने गया। कहीं भी शुद्ध प्रेम नहीं मिलता। आज देखते हैं कि आज एक जीवन में ही हम अपने पति को और पत्नी को तलाक देकर के 10 बार, 20 बार, 25 बार बदल लेते हैं। समस्याएं पैदा हो जाती हैं। बड़े बड़े शहरों में हम एक दूसरे से रगड़ते हैं, स्थान नहीं है चलने के लिए। कलकत्ते में, बंबई में हमने देखा, गुजरात में देखा, सब लोग बड़े पिस करके चलते हैं, रगड़ करके, जगह नहीं सड़क पर चलने का, किंतु किसी के प्रति किसी की सहानुभूति नहीं है, प्रति नहीं है। एक ही फ्लैट में एक आदमी मर गया, एक दूसरे की शादी हो रही है, वो नहीं जानता है कि ये पड़ास पड़ोस वाला कौन है, वो ही सहानुभूति। प्रेम हृदय का जो धर्म था वो निकल गया, खत्म हो गया। आत्मा की भूख शांत हो, खत्म हो गई, और ये शरीर की भूख बढ़ गई। किसी तरह से रुपया कमाना, पैसा कमाना हमारा धर्म हो गया। बहु कैंड क्रू, माता को यदि सूट करके भी पैसा मिले तो माता को भी सूट कर दो। आज समाज में माता पिता के प्रति आदर नहीं रहा, उनके लिए ओल्ड हाउस बन रहे हैं। आजकल भारतवर्ष में तैयारी हो रही है पश्चिम देश का नकल करके, जो बूढ़े माता पिता हो जाएं, वो संसार से ठुकरा दिए जाएं और वो ओल्ड हाउस में रहे, अखबार पढ़े, बस जीवन बर्बाद। इसलिए विज्ञान ने ये अभिसंपात किया हमारे ऊपर में, समस्याएं ऐसी ला दी। जब प्रेम नहीं है तो वैभव आकर के क्या करेगा? इसलिए श्रीमद् भागवत का यह संदेश मैं आप लोगों के सामने उपस्थित कर रहा हूं। कल जो हमने प्रश्न किया था परीक्षित महाराज जी ने अपनी राजसभा में सुखदेव गोस्वामी के चरणों में, जो अभी मरने वाला है उसका क्या कर सकते हैं? Those will die at once, but it's their duty. In a moment he will die, first to die, first to do. But it's their duties. जो अभी मर जाएंगे उनका क्या कर सकते हैं? उस समय जन्म नियम नहीं चलेगा, उस समय में दान दक्षिणा भी नहीं चलेगा, क्योंकि जब पवित्र रूप दान नहीं दिया जाता। उस समय में योगाभ्यास भी नहीं चलेगा, रोष भी नहीं चलेगा, और उसके साथ संसार का कोई एक सुई धारा भी नहीं जाएगा। याद आ रही है एक छोटी सी लघु कथा की। कोई राजा, वो बहुत बड़ाधारी राजा था, धनी संपन्न था। एक भिक्षु गया उनके पास में, हमारा जैसा सन्यासी उनके पास में गया, बोला द्वारपाल से जी कहो एक भिक्षु एक सन्यासी आपसे भेंट करने आया है। वो जाकर के राजा को कहा, राजा ने कभी फुर्सत नहीं है, मैं बहुत काम में हूं, सोचा कि कुछ मांगेगा आएगा तो। सन्यासी लोगों का काम आजकल कुछ मांगना होता है। सन्यासी की धारणा उनके हृदय में नहीं थी, नहीं तो जैसे जाऊ का तो जैसे पांच छह दिन के बाद में मिले, वो चला गया पांच दिन के बाद में फिर आया, जाओ का तो जो वो सन्यासी मिलने आया है, उन्होंने कहा अभी फुर्सत नहीं है, दो दिन के बाद में आया। फिर उन्होंने कहा दो दिन के बाद में फिर आया, किया गया कैम्प आफ्टर टू डेज, दो दिन के बाद में आया। बोला जो कहो जिस समय मिलना चाहता हूं। राजा ने कहा ये अभी फुर्सत नहीं, पीछे आ जाए। उसने सोचा कि राजा से नहीं मिलेगा, वो उनके स्त्री के पास में रानी के पास में गया और संदेश दिया जी मैं महारानी जी से मिलना चाहता हूं। रानी बड़ी हृदय की कोमल थी, जाओ बुला। पुरुषों का हृदय बड़ा जरा कठोर होता है और महिलाओं का हृदय जरा बहुत ही कोमल होता है। ये कृष्ण लीला में भी देखा है, ब्राह्मणों से कृष्ण ने भोजन मांगा नहीं दिया और ब्राह्मणियों किसे कहा तो ब्राह्मणियों ने भक्त करके थाल उनके सामने लगा दिया। तो रानी ने बुलाया, रानी के पास में गया। रानी ने बोला क्या चाहते हो? मैं कुछ नहीं चाहता, केवल ये बतलाने आया हूं मैं बहुत बड़ा भारी ज्योतिषी हूं, मैं गिनने जानता हूं, मैं गिन करके बतला देता। ये राजा भी पांच छह दिन में मरने वाला है, सातवें दिन जरूर मरेगा, कोई उसको रोक नहीं सकता। रानी तो बड़े घबरा गई, राजा को बुलाया, राजा उसी समय में आया। क्या बात है? अरे ये सन्यासी आया था वो भी चला गया कहीं। उसने कहा जैसे राजा सात दिन के बाद में मर जाएगा, मैं 15 दिन पहले आया था किंतु राजा हमसे भेंट नहीं किया, नहीं तो 15 दिन पहले बदला देगा। अब राजा को जो कुछ करना है कर ले। राजा घबरा गया, उसने कहा जो साधु सन्यासी को खोज करके लाओ, यहां पर तिलक होगा, गले में तुलसी की माला होगी, हाथ में ये दंड होगा और हरिनाम कर रहा होगा टोली लेकर के, हरे कृष्ण गोरा रंग का था भला। खोजते उन्होंने देखा और उसको फिर बुला लाए। राजा ने कहा जी आप क्या मुझसे किस लिए मिलना चाहते थे? अरे महाराज आप सातवें दिन मरेंगे, मैं तो 15 दिन पहले आया था बतला देता, आप जो कुछ करना है कर लो। उसने कहा मैं क्या कर लूं? कहिए क्या कर लूं, हमसे क्यों पूछता है? तुमने जो सारा जीवन ये जो काम किया है, तुम्हारे पास ऐसा क्या सा चीज है जो तुमको उसमें सहायता करे? कहीं मुझे तो पता नहीं, मुझे क्या करना चाहिए? तो उन्होंने कहा देखो तुमने बहुत ही उपकार का काम किया है, लोगों को दान दिया है, इस बच्चे को ले लो।
बहुत दान दिया है,
बहुत सा दान दिया है, दक्षिणा दिया है, गायों का दान दिया है, रुपया पैसा दिया है, गरीबों को दान दिया है और बहुत अच्छा अच्छा काम किया, इसलिए स्वर्ग की प्राप्ति होगी। किंतु वहां पर एक बात है, यह स्वर्ग तो जाएगा, सब प्रकार की सुविधाएं वहां पर हैं, किंतु एक बात की कमी है, वहां पर बड़े मच्छर आजकल हो गए हैं काले काले, जैसे इंडिया में है बड़े बड़े काले काले मच्छर, बड़े लंबे लंबे हो गए और वो काटेंगे तो मलेरिया बुखार हो जाएगा। इसलिए एक बात करो, वहां पर एक अच्छी मच्छरदानी है नई बिल्कुल, किंतु कोने में फटी हुई है थोड़ी सी, तो यहां से थोड़ा सा धागा और सुई ले लो और वहां जाकर के सिलाई कर लेना, बस सब ठीक है। भाई महात्मा जी ये कैसे होगा, मैं सुविधा कैसे ले जाऊंगा? मैंने कहा तो तुमने जीवन भर में क्या किया, धिक्कार है तुमको जो तुम एक सुई धागा भी यहां से नहीं ले जा सकते, तुमने क्या किया? आप लोग सब सोचिए जब मरेंगे तो क्या लेकर के जाएंगे, सुई धागा जाएगा साथ में? फिर क्या किया? जब ये प्रभु का राधा कृष्ण का भजन किया ये साथ में जाएगा, अन्यथा कुछ भी नहीं जाएगा। इस चीज को अच्छी तरह से समझना चाहिए, इसलिए शास्त्रों में बतलाया, भागवत में बतलाया, जो अभी मरने वाला है उसको क्या करो, कहो ये कृष्ण कृष्ण को, हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम। यदि इतना नहीं कर सकता कहो ये कृष्ण कृष्ण को, राधे राधे को, राम कह दो बस इतना। यदि नहीं कर सकता उसके कान में कहो ये राम, बस इसी से काम हो जाएगा। उसकी मृत्यु चल जाएगी। वो जन्म जन्मांतरों में सुखी हो सकेगा बस इतना ही करने से। इसलिए जो अभी मरने वाला है उसके लिए हरिनाम को यही रक्षा कर सकेगा। ये हरिनाम कृष्ण स्वयं है। अजामिल का चरित्र भागवत में दिया गया है। अजामिल बड़ा भारी पाप था। अपनी पत्नी को छोड़कर, अपने बाप और माता की सेवा को छोड़कर, अपने बच्चों की सेवा छोड़कर के एक वेश्या के पास में चला, अपना धन सब कुछ लेकर के चुरा करके उस वेश्या को दिया और उसी के साथ में रहने लगा। शराब पीता, डकैती करता, लूट मार करता, लोगों को हत्या करता, उसका सब कुछ छीन लिया। बड़ा भारी पापी था, दुष्ट था। ऐसा कुकर्म नहीं था जो उसने नहीं किया, किंतु अपने बेटे का नाम रख दिया नारायण, सबसे छोटे बेटे। इतने में 80 वर्ष का हो गया, 84 वर्ष का, और मृत्यु आई। एक हरी भयंकर जमके दूता है, डर गया, कांप गया। अब समय में अपने बेटे को याद आई, जिसको सारा जीवन याद आदमी करता है, जिसको प्यार करता है, उसी की याद आ जाती है। बस झट नारायण नारायण अपने बेटे को पुकारा। प्रभु ने कहा जारी हमें पुकार रहा है, अपने दूतों को भेजा। नारायण चार अक्षर चार विष्णु के दूत होकर गया। और जमदूत आए थे तीन, इसलिए तन से मन से वचन से जो पाप कर्म करते हैं उसके लिए तीन आए। व्हाट वी डू एनी सिन फ्रॉम तन मन वचन बाई बॉडी बाई तन एंड बाई माइंड। सो दे कैन थ्री एंड नारायण फोर लेट अस बिगिन विष्णु दूत। और आकर तुमको मार करके भगा दिया और उसके जीवन की रक्षा हो गई। इस प्रकार से एक नाम, वो भी शुद्ध नाम नहीं, प्योर नाम नहीं, नॉट इवन प्योर, अपने लड़के के लिए उसने बुलाया और भगवान ने उसकी रक्षा कर दी। और फिर वो भगवान का भजन करके वैकुंठ में गया। नाम के समान दूसरा जगत में गया, स्वयं ही भगवान ही राम नाम बने हैं। मैं इसके लिए आप लोगों से एक छोटी सी और कथा कहूंगा। आप लोग जानते हैं रामायण में 100,000 श्लोक थे। इन रामायण देव है 1,00,000 ऑफ श्लोक, 100,000 श्लोक हैं। जब वाल्मीकि जी ने बनाया तो और उसको सुनाया लव कुश ने, तो देवता दानव और मनुष्य लड़ने लगे। देवताओं ने कहा ये हमको मिलना चाहिए, असुर ने कहा हमको मिलना चाहिए, मनुष्य ने कहा हमको चाहिए। उसी समय शंकर जी आ गए, भाई क्यों झगड़ रहे हो? तो हम लोग भारतीय रामायण को लेना चाहते हैं। उन्होंने कहा हम भी लेना चाहते हैं। उन्होंने कहा हम भी, अच्छा तो मैं बराबर बराबर तुम लोगों की घात कर देता हूं, तुम लोग लेकर के संतुष्ट रहो। उन्होंने तीन विभाग किया 100,000 का, तो कितना हुआ? 33,000
बच गया।
1,000 बच गया, फिर 1,000 को 3 भाग में विभाग कर दिया, फिर कितना हुआ?
333
हो गया। कितना?
999
हो गया। एक बच गया श्लोक, केवल एक श्लोक बचा। एक श्लोक में चार चरण होते हैं, 8-8 अक्षरों के चार चरण, अनुष्टुप छंद में उन्होंने एक एक चरण बांट दिया, रह गया एक चरण। एक चरण में 8 अक्षर, फिर उन्होंने विभाग कर दिया 3-3, तो कितना रह गया? 2-2 दे दिया सबको, तो 3×2=6 चला गया। अब रह गया 2, यही 2 नाम कृष्ण या राम नाम है। संतप का ये मैं नहीं दूंगा किसी को, ये मेरे हृदय में रहेगा, क्योंकि बहुत मैंने परिश्रम किया। इसे समस्त वेदों का, उपनिषदों का सबका सार क्या है? ये राम नाम या कृष्ण। इसको विश्वास रखो, यदि राम नाम पढ़ना हो गया तो सब कुछ पढ़ना हो गया, और संसार में सब कुछ कर लिया। यदि राम नाम हो गया, कृष्ण नाम हो गया, और नहीं तो सब किया धराया जीरो हो गया। इस चीज को याद रखो, अंत में यही नाम ही काम करेगा, अन्यथा रोते हुए बिलबिलाते हुए सबको छोड़ करके न जाने कहां जाएंगे, कोई भी ठीक नहीं, कहां से आए हैं, कहां जाना है। इसलिए आगामी उपाख्यान के द्वारा इस चीज को अच्छी तरह से समझना चाहिए। वेदों में ऐसे कितने उदाहरण हैं, यही वैदिक ज्ञान है। एक बार किसी पाश्चात्य रिसर्च स्कॉलर ने हमसे इंडिया में वृंदावन में मिला वो, और उससे पूछा, महाराज जी मैं एक चीज आपसे पूछना चाहता हूं। पूछिए, मैं तो बहुत भाई अधिक विद्वान नहीं हूं, वेद भी उतना नहीं जानता, तो भी आप पूछिए। उसने पूछा ये प्रश्न कि रामचंद्र जी जब मारीच को मारने के लिए गए और मारीच सोने का हिरण बन करके आया और फुटता फुटता हुआ उनके सामने से निकला, सीता जी ने कहा ये हिरण बहुत ही सुंदर, प्रभु इसको पकड़ करके ले आओ, और यदि ऐसे नहीं हो तो इसको मार करके भी लाओ, मैं यदि जीवित आ गया तो मैं कह कई मैया को ये जाकर के दूंगा दूंगी ना? और यदि मर गया तो अभी इसका छाल लेकर के ले जाएंगे तो भक्त जी बैठेंगे इस पर, उसको मैं दूंगा अपने राम चले गए उसको मारने के लिए। उस समय में जब वो मरने लगा राम के बाणों से, तो उसने पुकारा हा लक्ष्मण हा लक्ष्मण, आप लोग शायद ये सुने होंगे, हा लक्ष्मण पुकारा। उसमें सीता जी ने कहा देवर आप जाइए राम की सहायता कीजिए, राम पर कोई भी विपत्ति आया राम ने बुलाया है, राम के शब्दों में हुआ है स्वर्ग। लक्ष्मण जी ने कहा हमारे भाई के ऊपर में कोई भी विपत्ति नहीं आ सकती, आप निश्चिंत रहें। उन्होंने बार बार लक्ष्मण जी को कहा जल्दी से जाओ अपने भाई की रक्षा करो, वो कोई भी विपत्ति में है, किंतु लक्ष्मण जी नहीं माने, तस्य मस नहीं हुए, उन्होंने हमारे भाई के ऊपर में कोई भी विपत्ति नहीं आई। सीता जी बड़ी दुखी हो गई और बिगड़ गई, क्रोधित होकर के कही तुम हमारे साथ में रहना चाहता है, तू भक्त का खौफी या पुलिस है सीआईडी है, तू हमको पाने के लिए सीता जी राम को मरवाने के लिए तू यहां पर आ रहा है, तुम भक्त का गुप्तचर है, समझ रखो मैं आग में जल जाऊंगी किंतु तुम्हारे साथ में नहीं रहूं। लक्ष्मण जी बड़े दुखी, हम इनके कितने दास हैं, कितनी सेवा करते हैं, और इन्होंने ऐसा हमको कहा, अरे अब तुम्हारी जैसी इच्छा जो होना है, देखो एक बात करना मैं एक लाइन दे देता हूं। धनुष उठाया उसे एक लाइन चारों तरफ से दी, गोल सा घेरा बना दिया लाइन, कहा मैं जा रहा हूं किंतु आगे मत निकलना, कभी बाहर मत होना, कह करके तो वो चले गए। और इधर में जब देखा रावण ने ये कि ये कोई अब यहां नहीं है, वो झटा और सीता को पकड़ करके ले जाना चाहे, किंतु जब ही उस लाइन पर पैर रखता है आग निकलती है। देखा था आप लोगों ने वो क्या निकला,
रामायण का सीरियल,
रामायण का सीरियल नहीं है तो आप ही सुनिए, जब ही पैर रखता है तभी आग निकलती है और झट पीछे हो जाता है। उसमें क्या था उस लाइन में, ये पुराणों में ऐसा लिखा है, क्या है जैसे कि आग जल जाती थी और आगे नहीं बढ़ सका, जो लक्ष्मण जी ने वो रेखा खींच ली, मैं इसी को जानना चाहता हूं। मैंने कहा यह रिसर्च करने की बात है, यदि आपके आधुनिक वैज्ञानिकों को यह सद्बुद्धि आएगी तो इसका रिसर्च करके और इस चीज को पाएंगे और पा करके जगत को सुखी बना सकते हैं, यह भगवान की नाम की शक्ति है, ऐसी शक्ति है जो अजामिल को मृत्यु से बचा दिया, यह ऐसी शक्ति है जो ब्रह्मा को सृष्टि करने की शक्ति देती है, शंकर जी विश्व को ध्वंस करते हैं, विष्णु का पालन करते हैं, इसी शक्ति के बल पर पार्वती जी विश्व का सृजन करती हैं, हनुमान जी इसी नाम को लेकर के अब समुद्र को लांग गए, रामचंद्र जी को पुल पर स्वर्ग करके गुजरना पड़ा, और हनुमान जी ने क्या किया, बस एक छलांग लगाई, जय हो राम सिया रामचंद्र की जय, और यह वही शक्ति है जिसमें नील और नल पत्थरों को छूते थे और कहते थे जरा राम राम, और वो तैरने लग जाते थे, राम को पुल बना करके जाना पड़ा, एक तो पुल कैसे बना राम नाम के बल पर, राम ने सोचा कि ये पुल तो तैयार हो रहा है, सब ये पत्थर तैरते हैं, जरा मैं एक पत्थर लेकर के और जरा डालू तो देखू तो ये तैरता है कि नहीं, वो एक झाड़ी के अंदर में चले गए और जाकर के एक पत्थर उठाया और दिया छप किया पानी में डूब गया, ये तो बड़ी गड़बड़ी, ये नील राम नाम करते हैं और झट उतरता है और हमने फेंका तो वो डूब गया है, ये तो बड़ी खराब, हनुमान का ऋषि देख रहे थे, दौड़ करके आए, प्रभु आप यहां पर छिप करके क्या कर रहे? अरे तू हमारे पीछे पीछे लगा हुआ है, तुम जाओ अपने काम पर। अरे प्रभु आप बतलाइए तुझे क्यों आया। उन्होंने कहा भाई एक बड़ी भारी बात है, बड़ी लज्जा की बात है, तुम लोग राम नाम करता है और पत्थर तैरता है और मैं खुद राम होकर के पत्थर फेंका तो वो डूब गया। हनुमान ने कहा जैसे कौन सी बड़ी भारी बात है, अरे आपके नाम में और आप में कोई अंतर नहीं है, इसलिए आपका नाम लेकर के जो पत्थर दे देता है वो तैरता है, किंतु आप जिसको छोड़ देंगे फेंक देंगे वो तो डूबेगा ही संसार में, समझ रहे हैं। जिस पर राम की कृपा नहीं होगी तो क्या होगा, कहते जाओ भागो यहां से, तो वो डूब गया संसार में। ये तो बड़ी अच्छी बात, राम को संतोष हुआ, उन्होंने हनुमान को गले से लगा। इसलिए भगवान राम की कितनी बड़ी महिमा है इस चीज को समझ करके अभी से आज से ही प्याज लहसुन मांस मछली अंडे ये सबको छोड़ो, ये बड़ी प्रतिकार करेंगे। अभी जिसको खा रहे हो मांस को मांस और खादती, आज जिस मांस को मांस माने क्या, मांस माने मांग सौ 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 खादती, जिसको मांस खा रहे हैं वो कल खाएगा वही बन करके, कल हम भेड़े बनेंगे गाय बकरेंगे बकरी बनेंगे, और खाएगा कौन जिसको हम भी खाते। इसलिए इस सब चीजों को छोड़ करके भगवान का सहारा, जो मरते समय में भगवान का नाम तो याद आए, जन्म जन्म मुनि जतन कराही अंतराम करी आवत नाही। मुनि लोग सोचते हैं कि राम राम मरते समय में निकल आए नहीं आएगा, जन्म जन्म मुनि जतन कराए, मुनि लोग जतन करते हैं और अंत में मरते समय में राम नाम नहीं आता, बड़ा कठिन है उस समय आए नहीं आता, कहीं जल गया मर गया मर गया मर गया कहेंगे, किंतु राम नाम कृष्ण नाम सहज नाम नहीं आ, राधे राधे ये नहीं आएगा। इधर अभिषेक करो, काल करो सो आज का, और आज कर सो अब पल में प्रलय होएगी बहुत करो। अरे कल अभी एक मिनट के बाद में मृत्यु हो जाएगी, कौन जानता है मृत्यु कब आएगी, इसलिए आज ही से आरंभ करो। क्या करो, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। आज से आरंभ कल से नहीं, यही भारतीय हमारा वैदिक ज्ञान है, इसमें इतनी शक्ति है जो एटम बम में शक्ति नहीं है, किसी भी आज में इतनी शक्ति नहीं जितना भगवान के नाम में है। इसलिए भागवत ने कहा एतत् निर्विद्यमानानां इच्छताम कुतो भयम् योगिनाम उपनिर्णितम् हरे नामानुकीर्तनम् भागवत। अभी जो मर रहा है उसको कृष्ण नाम सुना दो, राम नाम सुनाओ कान में, राधे राधे उसके कान में डाल दो, यदि नाम का प्रभाव नहीं जानता है बोल भी नहीं पाता है किंतु जाएगा तो काम करेगा, कैसे हाथ में तुम समझो या ना समझो हाथ डाल दो, बिना जाने सुने अज्ञान से ही डाल दो, बच्चा कोई डाल दे आग को नहीं जानता तो अभी आग जलाएगी कि नहीं, वो तो जलाएगी, आपका अर्थ नहीं है जलाना। इसे भगवान नाम तुम जानबूझ करके करो, प्यार से करो, श्रद्धा से करो, अश्रद्धा से करो, चलते फरते छींकते समय में पैर पिसल करके गिरते समय में भी भगवान का नाम यदि करो तो वो अपना प्रभाव जरूर ही दिखलाएगा, अंततः मृत्यु से तो पार करा ही देगा, भले ही बैकुंठ को अपरेज को न दे सके किंतु मृत्यु को अतिक्रम करा है, संसार के दुखों को वो दूर कर देगा, ये ऐसा विश्वास रखो। नहीं हो मैं कहता हूं गारंटी हूं, आप लोग कल ही से आरंभ कर दीजिए, देखिए दो चार दिन में आपका मन सुधर जाता है और दूसरी तरफ से चला जाता है। इसलिए यह सनातन धर्म की प्रतिष्ठा हुई, यहां पर राधा कृष्ण का नाम सिखाता है, इत्यादि नाम हो कीर्तन हो, इसलिए यही एकमात्र सहारा है, दूसरा सहारा नहीं, यही भागवत की सबसे बड़ी चीज है। और यदि समय हो और दूसरों के लिए क्या करें, और यदि समय हो तो श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरण पाद सेवनम अर्चनम वंदनम दर्शन सक्षम आत्मनिवेदनम, भगवान का नाम कीर्तन करो, भगवान की कथाओं को सुनो, भगवान का अर्चन वंदन करो, उनके आस्था स्तुति करो, उनके लीला स्थानों में जाओ, जैसे वृंदावन है अयोध्या है इन सब स्थानों में द्वारका इत्यादि में जाओ, उनका नाम कीर्तन उनकी पूजा अर्चन करो, उनके प्रति सख्य भाव रखो यदि कल्याण चाहते हो पर ऐसा करो। इति पुरुषार्पिता, पहले अपने को गुरु जी के चरण में अर्पित करो, अनकंडीशनल सरेंडर। सर्वधर्मान परित्यज्य माम एकम सर्व, माम एकम कुछ चले कौन कह रहा माम एकम, और दूसरे के यहां नहीं, दूसरे यहां करने से माया नहीं जग जाएगी। क्यों? एते चांस कला पुरुष कृष्णस्तु भगवान, कृष्ण ही स्वयं भगवान, राधा जी उनकी पोटेंसी और शक्ति है, इस चीज को समझो। उन्होंने विश्व का सृजन किया, एक कटाक्ष मात्र से विश्व का सृजन कर दिया, वही हम सबका पालन कर, ऐसा मत समझे हम पालन कर रहे हैं बच्चों का। अजी आज यदि तुम्हारी पृथ्वी क्या पालन करेगा, हिटलर चला गया, बम तो बनाया था विश्व के लिए जो उसे खत्म करके मैं खो जाऊंगा, क्या किया उसने, नेपोलियन बोनापार्ट चले गए, हमारे हिरण्यकश्यप चले गए, रावण चले गए, क्या हुआ, सोने की लंका भी जल करके खत्म हो गई, नहीं गई साथ में, इस चीज को समझो। आज ही से कल करो सो आज तक, कल जो करेगा आज से करो, नहीं कल से मैं करूंगा, नहीं आज करो, क्योंकि कल प्रलय हो जाएगा, मर जाएंगे, क्या होगा, कोई ठीक गारंटी नहीं। अभी शादी करके कोई जा रहे थे, इतने में कहीं एक्सीडेंट हो गया और सारा परिवार पर कन्या और उसके माता पिता सभी लोग मर गए, हो गया संसार में। किसी महीने में नहीं मरेगा, बारह महीनों में नहीं मरेगा, और रात में नहीं मरेगा, दिन में नहीं मरेगा। एक तरह से अजर अमर हो गया ब्रह्मा जी के पास से, कौन हिरण्यकशिप, वो और उसका छोटा सा बच्चा 5 वर्ष का शिशु प्रहलाद महाराज, दोनों में लग गया। वो कह रहे तुम हरिनाम मत करो, और वो कहता जी मैं तो करूंगा, आपके सब आदेश को पालन करूंगा, किंतु भगवान का नाम मुझे कर रहे हैं। इसके पहले की बात है, हिरण्यकश्यप को क्यों विष्णु से झड़ाई, क्यों लड़ाई हो गई, क्यों विष्णु को नहीं मानता है, उसके भैया को हिरण्यकश्यप को भगवान ने बड़ा रूप धारण करके मार दिया, वो पृथ्वी को चुरा ले गया, वेदों को चुरा ले गया, इसलिए पृथ्वी को फिर अपने समतल पर लाने के लिए उन्होंने बड़ा रूप धारण करके प्रलय के समय में वो भीतर चले गए और जाकर के पृथ्वी को अपने दांतों पर पकड़ कर लिया है, और फिर नक्ष को भी पकड़ा, फिर नक्षार हरण कशपु माने गया। हमारे संस्कृत में जितने भी शब्द हैं वो सब सार्थक है, सार्थक माने उनका अर्थ होता है। अंग्रेजी में या दूसरी भाषाओं में आजकल जो नाम बच्चों करते हैं, लिली, टिंकू, फिंकू, शिंकू, अरे ये क्या, ये कहां से आ गया, सिंकू टिंकू फिंकू माने क्या, इसका क्या अर्थ है, बड़े प्यार से कहा है, अरे भाई मधुसूदन उस बच्चे का नाम, नहीं नहीं मधुसूदन ठीक नहीं है, टिंकू ठीक है, अरे टिंकू क्या, किंतु संस्कृत में, गुजराती में, हिंदी में, बंगला में शब्दों के अपने माने होते हैं, अर्थ होते हैं, कोई भी शब्द हो जरूर कुछ ना कुछ माने, कुछ ना कुछ हिरण्यकश्यप माने क्या, हिरण्य मन से स्वर्ण, हिरण्य माने होता है स्वर्ण सोना, जो अर्थ को जानते हैं कि हमारे जीवन में सुखी होने का कारण यह अर्थ है, ऐसा जानते हैं वो सब हिरण्यकश्यप के भाई हैं, जितने भी वो लोग आ रहा है समझ में। हिरण्यकश्यप किसको कहते हैं? हिरण्य मैंने सोना, पक्ष मैंने आंख, जो ये समझते हैं कि सोने के द्वारा, अर्थ के द्वारा, वैभव के द्वारा हम जगत में सुखी रह सकते हैं, वो सब हिरण्यकश्यप के दल के सैनिक या उनके भैया और परिवार के। और जो ये समझते हैं भगवान के नाम के द्वारा ही, भगवान की भक्ति के द्वारा हम प्रसन्न रह सकते हैं, वो प्रहलाद जी के दल के। हिरण्यकश्यप का भैया मारा गया, हिरण्याक्ष मारा गया, उसका सिर कट गया और वो बेबिया मर गया। हिरण्यकश्यप उसके शरीर को राजभवन में लिया और लेटा दिया, कफन ऊपर से चढ़ा दिया गया। हिरण्यकश्यप की मैया रोने लगी, हिरण्याक्ष की पत्नी और उसके 50 लड़के रोने लगे, उनकी बहू में रोने लगी, सब लोग रोने लगे, छाती पीट पीट गए। हाँ महाराज किधर चले गए, हाँ हमारे पिताजी कहां गए, हमारे पति कहां चले गए, सभी लोग रोने लग गए। कोई भी समझाने वाला नहीं, हिरण्यकश्यप स्वयं समझाने लग गया, अरे भाई क्यों रोते हैं, वो वीर की गति को प्राप्त हो गया, लड़ करके मरा, रोने की कोई जरूरत, आज न कल तो मरना है, आज मर गया कोई बात नहीं, अरे कल मरता आज मर गया कोई बात नहीं, समझा रहा। वेदों का ज्ञाता था हिरण्यकश्यप और रावण दोनों, किंतु भगवान में विश्वास नहीं उनका था, जानते हैं सभी किंतु करते नहीं। ये उपदेश दे रहा है किंतु इसका फल नहीं होगा उपदेश का, क्यों? ये खुद नहीं करता और उपदेश दे रहा है, वेदों की बात। बोनाफाइड जो गुरु हैं, जो सदगुरु हैं, और नकली गुरु में ये अंतर है। सदगुरु जो हैं, जो सिद्धांतों को जानते हैं, भगवान का भजन करते हैं, वो कह देंगे तू हरि का भजन कर, बस इतना ही कहेंगे, कह जो राम राम, बहुत यथेष्ट हो गया, आदमी उसको पार कर जाएगा, उसको ग्रहण कर लेगा, वो करेगा सारा जीवन, वो गिरेगा नहीं। और यदि क्वालिफाइड गुरु नहीं है, बोनाफाइड गुरु नहीं है, और वो उपदेश देगा जो राम नाम या कृष्ण नाम करो, कोई भी उसकी बात नहीं सुनेगा। इस विषय को अच्छी तरह से समझो, पक्का गुरु होना चाहिए। इफ दैट गुरु इज बोनाफाइड सदगुरु एंड इफ इट टेल्स इनिशिएट्स एंड टेल्स दैट टू कृष्णाम हरे कृष्णा, देन इट विल बी बोनाफाइड, इट इज कॉल्ड सप्त ब्रह्म, सो मच पावर। कैसे? नारद जी ने वाल्मीकि जी को कहा, जब वो बहलिया हुआ था, ब्राह्मण घर का लड़का, कुसंग में पढ़ करके लूटना कूटना डकैती करना लोगों को मारना, ये उसका काम हो गया, वहां पापी हो गया। इतने ब्राह्मणों और ऋषियों को मारा कि उसके जनेऊ से 10-20 कुएं भर गए। उस समय में नारद जी मिले, नारद जी को मारना चाहता था किंतु नहीं मार सका। उसने कहा कि घर में जाकर के देखो, अपनी पत्नी और बेटे और बाप से पूछो तुम्हारे पाप के वो भाग लगे कि नहीं। उन लोगों ने किसी ने मंजूर नहीं किया, लौट करके आया, उनके चरणों में गिर गया। उसमें नारद जी से पूछा, मैं क्या करूं, एक बात धनुष और तीर अनुग्रह ये सब फेंक दो, और मैं कहता हूं ये राम राम करो तो एक बार बोलो राम, नहीं कर सकता कुछ, मुझको ये नहीं मैं कर सकता। अच्छा एक बात करो, मारा काटा है तो मारो मारो तो खा किया है, मरा मरा हाँ ये तो कर सकता, अच्छा तो मरा मरा कर, तो वो मरा मरा कर, मरा 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 उल्टा नाम जपत जग जाना, वाल्मीकि भय ब्रह्म समाना, उल्टा नाम जप करने पर भी, किंतु गुरु कौन था? हम कहते तो होगा नहीं होगा, मेरे कहने से नहीं है, सब लोगों के कहने से नहीं, नारद जी के कहने से कम मान सकता, गुरु ऐसा होना चाहिए, पानी पियो छान कर और गुरु करो जान कर, परीक्षा करो तुम्हारे गुरु कैसे हैं, उन्होंने भजन किया है कि नहीं, भजन करते हैं कि नहीं, भगवान के में आसक्ति है कि नहीं, प्रीति है कि नहीं, तुलसीदास जी जैसे हैं कि नहीं, वाल्मीकि जी जैसे हैं, नित्यानंद प्रभु हरिदास जी महापापी जगाई मधाई को कहा बस साथ ही साथ में बदल गया, परम भक्त हो गया। इस चीज को समझना चाहिए। इसलिए हिरण्यकश्यपु जी उसको मना करेंगे, अब तुम हरी हरी मत करो, और वो कहते हैं हरी हरी तो बस कृष्ण 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 हरे कृष्ण बच्चों के साथ में भी सबके साथ में बस किए ना। पिताजी ने उसे बुलाया, बुला करके कहा भाई तुमको गुरु जी के पास में पढ़ने के लिए दिया और तुम्हारे गुम है संडा मार्क। संडा मार्क माने क्या? संड माने सांड, सांड जानते हैं जो खूब खाता है, इधर उधर टलता रहता है, इच्छा के अनुसार में यहां वहां जाता है, कोई नियम रेगुलेशन नियम नहीं उसके लिए है, जहां हुआ तहां गाय के पीछे दौड़ा, इधर गया वहां खाया, किसी के घर में खा लिया, कुछ लोग डंडे से भी उसको खिला देते हैं, डंडे भी खाता है, यह है शान, कोई रेगुलेशन नहीं। और अमरख अर्थ माने सूर्य, जहां पर सूर्य नहीं चमकते हैं वो अंधकार, यहां पर ज्ञान नहीं है उसको कहते हैं अमरख। श्री संडामर, ज्ञान से भक्ति से कोई संबंध नहीं, ऐसा व्यक्ति वो संडामर्क है, शान के समान है, उनके लिए कोई रूल रेगुलेशन नहीं है। उनको पढ़ा रहा क्या? शाम दाम दंड भेद चार प्रकार की नीतियां राजनीति आजकल भारतवर्ष में चल रही है। वो कहता है मैं प्रधानमंत्री हूंगा, वो कार्य में प्रधानमंत्री, वो कार्य में प्रधानमंत्री, कौन आज वो बदल रहे हैं, कल वो बदल गए, परसों बदल गए, कोई कुछ ऐसा नहीं, राजनीति से नहीं, पतन सरल हो, यदि सरल हो निष्कपट हो गए भगवान के चरणों में समर्पण कर देने से सब कुछ हो जाएगा। हिरण्यकश्यपु इस तरह से भगवान का विरोधी, और ये तो जब मर गया तो समझा रहा है, देखो तभी मैं कह रहा था जो सदगुरु यदि होंगे तब तब तक फिर ये काम करेगा, और सदगुरु नहीं मिले और वो लाख बार राम राम करेगा तो वो काम नहीं होगा, इस चीज को पहले समझना चाहिए। इसलिए वो समझा रहा है, देखो भाई रो मत, मैं तुमको एक इतिहास बताता, ये शरीर जिसका जन्म हुआ है इसकी मृत्यु भी है, जो जन्म लिया है वो मरेगा जरूर, जातस्य हि ध्रुवो मृत्यु ध्रुवं जन्म मृतस्य, ये गीता का संदेश है, ये वैदिक संस्कृति और वैदिक ज्ञान है, इस चीज को समझो, जो जन्म लिया है वो मरेगा, यह शरीर मैं नहीं हूं, मैं ये बड़ी खूबसूरत औरत हूं, नहीं मैं खूबसूरत पुरुष हूं, वो मेरी बीवी है, मैं उसका पति हूं, वो मेरा बेटा है, भाई ये गलत, ये शरीर नहीं, हम आत्मा है शंकर भगवान के दास, इस चीज को समझा जाए, आत्मा अजर अमर है, वो आग में नहीं जलता, उसको हवा नहीं सुखा सकती, पानी नहीं भिजा सकता, उस पर विष की क्रिया नहीं होगी, इस चीज को समझा जाए, आत्मा अजर अमर शाश्वत और नित्य है सनातन, इस चीज को जन नहीं सनातन धर्म है, सनातन धर्म मांस मछली नहीं खाया, जनेऊ लगा दिया और सनातन धर्म हो गया, नहीं, इस सनातन तत्व को समझना होगा, वैदिक ज्ञान को समझना होगा कि मैं आत्मा हूं, मैं भगवान का पार्ट और पार्श्व हूं, अंश हूं, ईश्वर अंश जीव विनाशी
चेतन
अमल सहज सुख राशि, जैसे भगवान आनंदमय है, जीव आनंदमय, भगवान को छोड़ करके भूल करके ये संसार में घूम रहा है, जन्म और मरण के चक्कर में पड़ता है, इसलिए इसको समझना ही सनातन धर्म है, और भगवान का भजन करना ये सनातन धर्म है, वहां पर हिंदू मुसलमान क्रिश्चियन ईसाई गुजराती ईसाई बौद्ध ये सब विचार नहीं है, आत्मा है, सभी भगवान के दास, इसी सबसे ब्रदरहुड भाव, विश्व प्रेम इसी को कहते हैं, गधे में घोड़े में मनुष्य में पेड़ में पौधे में सब जगह वो आत्मा है, इस चीज को समझो, और कृष्ण ही सबके मूल है, उनके साथ में प्रेम होना चाहिए, यही विश्व धर्म है, सनातन धर्म है, वैष्णव धर्म है, भागवत नहीं धर्म, भागवत में कहीं हिंदू मुसलमान क्रिश्चियन ईसाई की झगड़ा की बात नहीं, सभी भगवान के हैं, आत्मा अजर है, तो वो कह रहा है देखो यदि विश्व के सभी लोग, एक इतिहास कहने लगा, ये एक कुशीनर देश के राजा थे, वो विश्व में सबसे बड़ा राजा होना चाहते थे, इसलिए अपने पड़ोसी पर राजे पर उन्होंने आक्रमण कर दिया और युद्ध में मारा गया, सब लोग रो रहे हैं, समझाने वाला कोई नहीं, उस समय जम 5 वर्ष के बालक होकर के आए, भाई किस लिए रो रहे हो? कोई उत्तर नहीं दे रहा। बाबा पूछा कि भाई किस लिए रो रहे हो? तो एक लड़के एक दुष्ट आदमी ने उत्तर दिया, भाई ये मर गए इसलिए रो रहे, राजा मर गए। उसने कहा कि मेरे पिताजी मर गए। भाई मर तो नहीं गए, कहां गए? ये तो सो रहे, उनसे बातचीत करो, जिसको पिता कहा तो वो तो सो रहे हैं। तो होम इन लाइन डाउन दिया फादर, फादर इन लाइन डाउन दिया, नहीं गया कहीं। तो ना ये शरीर के लिए नहीं रो रहे तो किसके लिए रो रहे? अरे उसके अंदर से जो आत्मा निकल करके गई मैं उसके लिए रो रहा हूं। अच्छा तो ये बतलाओ, जो आत्मा निकल करके गई वो काली थी कि गोरी थी? कितनी लंबी चौड़ी थी? तूने देखा नहीं? मैंने तो देखा ही नहीं इसको, देख कैसे लंबी चौड़ी गोरी थी और कब चली गई, कैसे चली गई, कहां चली गई तो मैं नहीं जान। तो फिर रो क्यों रहा? तुम्हारे जैसे सैकड़ों आदमियों को मैं बुलाऊंगा और सभी लोग रहेंगे तभी नहीं आएगा। बंबई में पैसे देकर के रुलाने वाले रोने वाले बुलाए जाते हैं, पैसे देकर के। ऐसे तो कोई कौन रोएगा? तो 50-60 आदमी को बुला लिया, उनको पैसे 2-4 हजार दे दिए, भाई हमारे घर में कोई रोने वाला नहीं है, तुम आकर के छाती पीटो और रो। उनको 2-4 हजार रुपए दे दिया। तो वैसे हम बुला लेंगे विश्व से 10-20 हजार आदमी बुला लेंगे, पैसे दे देंगे और रो लेंगे, आ जाएगा तो वो नहीं लौटने का। वो जहां चला गया वहां से लौटना नहीं होता भाई, इसलिए समझो। काजे देखो, एक कबूतर एक कबूतरी थी, समझ रहे हैं? कबूतर कबूतरी, एक जोड़ा कबूतर कबूतरी। उसके बहुत से बच्चे थे, उन बच्चों को पालन करने के लिए वो जंगल में गए कुछ चारा के लिए, बच्चों को खिलाने के लिए, अपने खाने के लिए। देखा एक जंगल में सुंदर सुंदर हरी घासों के ऊपर में चावल के कण मन मोती के तरह दिखाए गए, चावल के कण थे। पत्नी ने देखा, कबूतरी ने कहा जैसे प्रिय प्रियतम चलो यही से हम लोग भी खाएंगे, बच्चों के लिए भी दे जाएंगे। इतने में पुरुष ने कहा कि देखो मत जाओ, इस जंगल में कहां से चावल का कण आएगा, ये बहेलिए ने जाल रखा है वहीं पर ये फेंक दिया है, जाओगी मरेगी। उसने बात नहीं मानी और वो झट फुर रुड़ी और वहां पर बैठ गई और चुनने लगी, पति को बुलाने लगी इशारे से, आ जाओ कोई बात नहीं है, कोई डर की बात नहीं। और इतने में बहेलिए ने जाल फेंक दिया, वो जाल कर करने अब तो रोने लगी, बिल बिलाने और ये भी ऊपर से उतर करके गया, वो भी बिल बिलाने लगा, दोनों मिलकर के रोने लग गए। ये कहता कि हाय है, मैं मर जाता तो अच्छा था, ये बच्चों को पालन कर लेती, मैं तो बच्चों का पालन करना था मैं जानता नहीं, तो ये बच्चे तो मर जाएंगे। हाय है कितने प्रेम से हम लोग थे और आज ये पहले ये चली जा रही है और मैं अभी तक बचा हुआ हूं, हाय है मेरी मृत्यु आ जाए। और वो बिलाप कर रहा था, इतने में बहेलिया ने देखा कि ये रोने में एकदम तन्मय हो गया है, उसने बाण निकाला और सर झट मारा उसके यहां पर लगा छाती में और आता हो गया, रक्त गिरने लगा और वहीं पर ठेर मर गया। बहेलिया हंसता हुआ ताली बजाता हुआ आया और उन दोनों को पकड़ करके पैरों में बांध करके घर लेकर के आग में सेक करके और खा गया। ऐसे कोई आदमी मर रहा है, हमारा पता रो रहे हैं, अरे वो अरे तुमको भी जाना है तैयार हो जाओ, हम लोग को भी तैयार हो जाना चाहिए। मेरे पिताजी मर गए, उनके पिताजी भी मर गए, उनके पिताजी भी मर गए, है कोई? तो इस तरह से हम लोग को विचार करना चाहिए कि हमको भी जाना पड़ेगा, इसलिए आज से हम लोगों को भगवान का भजन में लगना उचित है। यही हमारा सनातन वैदिक धर्म है, यही इसी को संस्कृति कहते हैं, भारतीय संस्कृति। यदि भगवान का नाम है हम लोगों को भी कभी न कभी जाना, इसलिए भगवान का भजन करना चाहिए। बाकी एक घंटा हो गया है, अभी थोड़ा सा कीर्तन करके और तब हम लोग कल से कृष्ण का लीला चरित्र जन्म से लेकर के दो एक कृष्ण के लीला के चरित्र गोपियों का महत्व भक्तों का महत्व हम वर्णन करें और अधिक समय रहता तो 5-7 दिन में भागवत की पूरी कथाओं को सुनाने का मैं चेष्टा करता। इसका बहुत ही गंभीर अर्थ है, सब इसमें प्रवेश नहीं कर सकते, इसलिए हम लोग को इसमें प्रवेश करके और भगवान का भजन करना ही मनुष्य जन्म की साधकता है। यदि हम प्रहलाद महाराज जी कह रहे हैं कि हमको बचपन से ही भगवान का भजन करना चाहिए, बच्चों ने कहा असुर बालक, भाई अभी जल्दी क्या पढ़ी है, हम लोग बड़े होंगे, पढ़ेंगे लिखेंगे, इंजीनियर बनेंगे, वकील बनेंगे, राष्ट्रपति बनेंगे, प्रधानमंत्री बनेंगे, और इसके बाद में जब बूढ़े हो जाएंगे 80 वर्ष के तब भगवान की माला करेंगे। आज से भी क्या जरूरत है, प्रहलाद महाराज जी कह रहे हैं, अरे बूढ़ा होगा कि नहीं होगा कोई गारंटी है? नो गारंटी दैट यू विल बी ओल्ड आर नॉट बिफोर दैट यू कैन बी दैट इन एज ऑफ 5-10 कोई जरूरत नहीं, कोई भी आवश्यकता। इसलिए भगवान का नाम बचपन से करो, बचपन में मति बड़ी कोमल होती है, जैसे बांस होता है हरा, उसको ऐसे नवा देते हैं झुक जाता है, किंतु सूखा हुआ बांस उसको ऐसे झुकाओ तो टूट जाएगा। 80 वर्ष के 60 वर्ष के बाद में किसी को उपदेश मत दो, वो नहीं सुनेगा। इसलिए बचपन में बच्चों की मति बड़ी कोमल होती है, तो वो हरि भजन है। न तब प्रयासों कर तब जत आयु बया परम, बिना दुख बिना बुलाए दुख आ जाता है, तो सुख भी होगा तो जरूर आएगा, खोदा देगा तो छप्पर फाड़ करके वो दे देगा। दुख बिना बुलाए आता है, बुढ़ापा आ जाती है, हम नहीं चाहते जो बूढ़े हो, तो बूढ़े हो जाते हैं, ये समय है, वो आएगा ही, जैसा हमने पूर्व जन्म में कर्म किया उसका फल भोगना भी तो पड़ेगा, इसलिए आएगा। तो वैसे तुमने सुख का काम किया तो सुख भी आएगा, इसलिए इसके लिए अधिक चिंता मत करो, चिंता करो जैसे हमारा भविष्य कैसा होगा, इसलिए भगवान का भविष्य भजन करो। देखो 100 वर्ष हमारी आयु है, मान लिया सपो 100 में से 50 वर्ष सोने में चला गया, रह गया 50, जरूर आदमी सोएगा ही, और यदि इन ड्रिंक अधिक किया तो फिर और भी अधिक समय चला जाएगा सोने में, इसलिए कम से कम 50 वर्ष सोने में गया, और 20 वर्ष बचपन से देकर लिखने पढ़ने सीखने खेलने कूदने और योग्य बनने में लगता है, इंजीनियर या कोई भी टीचर या कोई भी हो, 20 वर्ष यह गया, और 80 से 20 100 वर्ष तक की आयु, कमर भी सीधी नहीं होगी, चल नहीं सकेंगे, ओल्ड एज में शायद जाना पड़े, ओल्ड होम में, ओल्ड हाउस, कुछ भी नहीं कर सकेंगे उस समय। तो ये 20-20 40 और 50 90 वर्ष चला गया, और रह गया 100 वर्ष, इसमें विवाह शादी करना है, बच्चे हैं 10 वर्ष में बाल बच्चे करना है, घर बनाना है, कार लेना है, और सब व्यवस्था करनी है, बच्चों की शिक्षा देनी है, और इतने में हो गई मृत्यु, कब भगवान का भजन करेगा? इसलिए बचपन से भगवान का कैसे करो, भगवान से प्रार्थना करो, प्रभु हमारे लिए एक सब गुरु, वैष्णव के संग में जाओ, साधु संग साधु संग साधु साधु के संग, जो भगवान का भजन करते हैं, जो गरीब होने पर भी बड़े आनंद से रहते हैं, उनको कोई भी चीज की कमी नहीं है, शंकर जी के पास में कोई राज्य नहीं है, कुछ भी नहीं है, और विश्व को सब कुछ देते हैं, हनुमान जी के पास में क्या है, वो सबको सब कुछ दे सकते हैं, नारद जी के पास में भी कुछ नहीं, सब कुछ दे सकते हैं, इसलिए बचपन से भगवान का साधु संघ में जाकर के गुरु की सेवा करो, वो तुमको वैदिक ज्ञान और वैदिक जो भक्ति है इसको तुमको बता दें, भागवत में जिस भक्ति की बात कही गई है वो भक्ति को वो साझी दे देंगे, घर का काम करो, कोई हर्ज नहीं, गृहस्थ रहो या सन्यासी बनो, कोई फर्क नहीं, स्त्री है पुरुष है बाल है बच्चा है, कोई भी अंतर नहीं, जहां रहो वहीं से भगवान का नाम, पवित्र अपवित्र समस्त अवस्थाओं में भगवान का नाम किया जा सकता है, टट्टी जाते समय भी भगवान का नाम किया जा सकता है, मल मूत्र त्यागते हुए भी कोई हर्ज नहीं, इसलिए समस्त अवस्थाओं में, पैसा नहीं लगता कौड़ी नहीं लगती भगवान का नाम लेने में, पैसा नहीं है मैं बहुत गरीब हूं नहीं कर सकता ऐसी बात नहीं, इसलिए जहां भी रहो भगवान का नाम, स्थाने स्थिता सम्मान, गृहस्थ रहो त्यागी बनो साधु बनो जैसा भी हो, बाल बच्चों के साथ में रहो, हिंदू हो मुसलमान हो क्रिश्चियन हो ईसाई हो भगवान का नाम करो, समस्त अवस्था में पैसा नहीं, दिन है कि रात में, वो भी कोई बात नहीं, दिन में समय नहीं है रात में करो, सवेरे करो शाम को करो, बिना स्नान किए कर सकते हो, इसलिए भगवान के नाम में ये सब विचार बहुत ही प्रभावशाली है, इसलिए भगवान का नाम करो, सतगुरु का आश्रय करके वैष्णव की सेवा करते हुए, इसीलिए हमारे मंदिरों की व्यवस्था की गई है, कभी न कभी कोई संत आएंगे, कोई वैष्णव आएंगे मंदिरों में, कुछ हरि कथा कहेंगे, इसीलिए बनाया हमारे पूर्वजों ने, इसलिए इसका सदुपयोग, आज यही कर करके मैं कथा का विश्राम देता हूं, गौ प्रमानंदे जय जय श्री राधे, अंग्रेजी में बनाया था तो समय हो गया ना। करता हूँ अंग्रेजी में, दो मिनट बोलते हैं तो ये करते हैं।
आज हमारे विश्वनाथ मंदिर में आकर जो श्रीमद् भागवत कथा का प्रसंग और आशीर्वचन हमें कहे उसके हम खूब आभारी हैं। और कल भी ये प्रवचन जारी रहेगा, कल 7:30 से 9:30 बजे तक, तो स्वामी जी का दर्शन करने के लिए कल भी हम पधारे। हरि बोल, हरे कृष्ण, हरे रामा। हमें बीजा शिष्य छे तो अंग्रेजी में थोड़े प्रवचन करते, तो मैं आस्क द डिवोटी इन इंग्लिश प्लीज।
We've been told many things and the time is short, so we'll just have to give a brief summary of some of the things that he spoke, and maybe later we can explain things in greater detail. So he first of all started by offering his heartfelt obeisances unto his Gurudev, Bhakti Pragyan Keshava Goswami Maharaj, who was a disciple of Jagadguru Bhaktisiddhanta Sarasvati Thakur Prabhupada. He was a very dear disciple of his Gurudev. And he was also the sannyas guru of A.C. Bhaktivedanta Swami Srila Prabhupada, who brought Krishna consciousness to the Western countries. And so he was remembering his Gurudev and thinking how by his inspiration and giving sannyas to Bhaktivedanta Swami Prabhupada, this Krishna consciousness was spread all over the world. And he was began by explaining the present world situation. So although there is plenty of everything in the world, especially here in the West, and even in India now, we can see the material progress, all facilities are there, and especially the progress of modern science, so many discoveries are there. One can be sitting in one place and watching events going on in some other place of the world. And he even said that their science is so advanced now that they can penetrate into the heart and see what other people are thinking. So, although modern science has progressed so much, there is a great lacking in the world, and that is that there is no love between husband and wife, between children and parents, between brother and sister. This is a great problem. Formerly it was not so, but now with the progress of this modern civilization, we see that this is very much deteriorating. And as a result, although people have everything materially, they remain dissatisfied at heart. And so there is a great need to spread this Vedic knowledge in order to relieve this condition of the world. So this is done through the medium of Srimad Bhagavatam. So therefore the topics of Srimad Bhagavatam, by hearing these topics, we can relieve this lacking that is present in the world. So yesterday, Maharaj was telling towards the end of class about Maharaj Parikshit and how he was, when cursed to die, he inquired, what is the primary duty for one who is about to die at the next moment and also for those who may die after some time? So in his case, he had specific warning that he was to die within 7 days. So this question was very relevant for him. But it is relevant for all of us because we don't know whether we are going to die at the next moment. We don't know whether we have 7 days, 7 years, or 100 years. So this question is very important for all of us. So he said at that time, other practices such as giving in charity or trying to restrain the senses of the mind, yam, niyam, etc., these practices will not help us at that time, at the time of death. So he said at the time of death, the only thing that can save us is the chanting of the holy name of the Lord. I either the name of Krishna or Ram or any other principal name of the Lord. So he told one story that there was a great king, very wealthy, very powerful, and one sannyasi came to him and he requested an audience with the king, and the king refused to give audience. The servant went and requested that the sannyasi has come. He wants to meet with you. And the king was thinking, he's just coming to bother me, he's just coming to beg for something. So, so you please tell him that I have no time. So this went back and forth a few times. Finally, the sannyasi became discouraged, and instead he requested an audience with the queen, because women are by nature soft-hearted. So then he got audience with the queen, and he informed her that I am a great astrologer, and your husband will die within 7 days. So after that he left, and the king managed to find him. And when he came, he said, so what shall I do now? He said, no problem, you have performed so many pious activities, you will go to the heavenly planets, and there you will enjoy so much facility. But there's only one problem, that in the heavenly planets there are very large mosquitoes, and they will create so much problem for you. But no problem, they have very good mosquito nets there. The only difficulty is that they have holes in them. You'll have to bring a threaded needle. So he said, but how will I bring? I will not be able to bring anything from this world. So he said, therefore, understanding this point, you should know that the only solution is to get free from this process of birth and death altogether by chanting the holy name of the Lord. So, time is short, we don't have time to explain all the things that Maharaj was speaking tonight, but the main theme that was running through the class was the importance of chanting the holy names of the Lord. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare. So, we'll stop there, and now we can chant the holy name.
Thank you for summarizing briefly. So, we talk to Kirtan now, Pani Samana, all other questions, if we have in the dining hall before you.